कॉफी खत्म हो चुकी थी। टेबल पर बस कपों की हल्की सी भाप बची थी। अदिति ने कप को हल्के से घुमाते हुए कहा, आर्यन एक बात कहूं? आर्यन ने उसे देखा, हाँ कहो। अदिति ने गहरी सांस ली, हम दोनों कहीं घूमने चले जहां बस तुम और मैं हूं, कोई और नहीं, बस हम। उसकी आंखों में सीधी नजर थी। आर्यन कुछ पल तक चुप रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उसने कप टेबल पर रखा और शांत स्वर में बोला, नहीं अदिति, मैं नहीं जा सकता। अदिति का चेहरा एकदम उतर गया। क्यों, इतनी बड़ी बात तो नहीं कह दी मैंने, सिर्फ थोड़ी देर की ड्राइव या कोई जगह जहां हम रिलैक्स कर सके? आर्यन ने दृढ़ आवाज में कहा, मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकता, बस। उसने कुर्सी से उठते हुए बैग कंधे पर डाला और बिना पीछे देखे कैंटीन से बाहर चला गया। अदिति वहीं बैठी रह गई, उसकी उंगलियां कप की हैंडल को कसकर पकड़ चुकी थीं। उसके मन में जैसे कोई ज्वालामुखी भट पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है, आर्यन और मैं अलग अलग रास्तों पर? नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगी, उसे मानना ही होगा। हवेली का शाम। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हवेली के ऊंचे ऊंचे दरवाजों से सुनहरी किरणें भीतर आ रही थीं। आंगन में नौकर जाकर दीपक सजाने में लगे थे। ऊपर के हिस्से में सरोज अपने कमरे में बैठी थीं। कमरे की दीवारों पर पुराने पारिवारिक चित्र टंगे थे। उसके सामने उसका बेटा विशाल सोफे पर फैला हुआ था, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर वही लापरवाही। सरोज ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा तू थोड़ा अपने मामा के पास कारोबार में देखा सीखा कर, आर्यन तो वैसे भी पढ़ाई में बिजी है, तू थोड़ा साथ दे देगा तो उनका बोझ हल्का होगा। विशाल ने मोबाइल स्क्रीन से नजर हटाए बिना झुंझलाकर कहा, माँ प्लीज, आप जानती हो कॉलेज का कितना काम है मेरा, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, सब कुछ, मुझे टाइम ही नहीं है इन सब का। सरोज ने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बेटा कारोबार खेल खेल नहीं होता, तेरा मामा तुझसे बहुत उम्मीद रखता है, उनके पास पैसा है, कारोबार है, अगर तू साथ देगा तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। विशाल झल्लाकर सीधा बैठ गया, माँ अगर आपको उन्हें बोतल में उतारना है तो उतारो, लेकिन मुझे मत कहो, मैं अभी बिजी हूँ, मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके शब्दों में गुस्सा था। सरोज ने माथे पर हाथ रख लिया, तू ही तो बार बार कहता था कि आर्यन के साथ कॉलेज जाएगा, उसी की पढ़ाई, उसी की लाइफ देखनी है, तो अब मैं बोल रही हूँ कि कारोबार सीख ले, तो क्यों पीछे हट रहा है? विशाल ने फोन टेबल पर पटक दिया और चिढ़कर बोला, माँ वो अलग बात थी, कॉलेज जाना था तो मैं गया, लेकिन ये कारोबार, ये सब मेरी बस की बात नहीं, प्लीज इस टॉपिक को यहीं खत्म करो। वो उठकर जाने ही लगा था कि सरोज ने धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा, बेटा तू समझ क्यों नहीं रहा, तेरे मामा के पास बेहिसाब दौलत है, अगर तू उनका हाथ बटाएगा तो तेरे लिए दरवाजे खुद बखुद खुलेंगे, आर्यन तो पढ़ाई में ही खोया है, लेकिन तू अगर बिजनेस में आगे बढ़ेगा तो परिवार का नाम तुझसे ही रोशन होगा। विशाल के कदम वहीं थम गए। उसने पलटकर माँ को देखा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट तो थी, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं एक चमक भी आ गई। वो बड़बड़ाया, मतलब अगर मैं उनके साथ रहूं तो पैसा, नाम, सब कुछ मिल सकता है? सरोज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ बेटा तेरे लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। विशाल धीरे धीरे वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने माथे पर हाथ फेरते हुए सोचा, मैं पढ़ गया, सारी पढ़ाई लिखाई की मेहनत छोड़ सीधा शॉर्टकट, मामा के पास पैसा है तो क्यों ना उसी रास्ते जाऊं, कॉलेज के झंझटों से तो यही बेहतर है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। ठीक है माँ, अब की बार मैं खुद उनसे बात करूंगा। सरोज के चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आईं। दोनों रास्तों का खेल। एक तरफ आर्यन था, जिसकी आंखों में अभी भी शामली की तस्वीर बसी हुई थी, वो पढ़ाई, जिम्मेदारियों और अपने भीतर के खिंचाव में उलझा हुआ था, और दूसरी तरफ विशाल था, जो धीरे धीरे कारोबार, पैसे और शॉर्टकट की ओर खिंचने लगा था। हवेली के ऊंचे दरवाजों के पीछे ये दोनों रास्ते जैसे एक दूसरे से टकराने के लिए ही बने थे, क्योंकि वक्त का खेल अब तेज होने वाला था, जहां आर्यन को दिल की लड़ाई लड़नी थी और विशाल को लालच की।